This is our last hour together.
ये साथ में हमारा आखिरी घंटा है.
I thought we were going to have class this afternoon.
मैं ये सोच रहा था कि आज दोपहर में भी हम लोग साथ में क्लासेस करेंगे.
So I prepared you another big test for this afternoon.
तो इसलिए मैंने दोपहर के समय के लिए आपके लिए एक बड़ी परीक्षा तैयार की थी.
So the Lord has delivered you.
लेकिन प्रभु ने अब आपको बचा लिया, छुटकारा दे दिया उससे.
But next time.
लेकिन अगली बार.
Be ready.
तैयार होके आइएगा आप.
I want to close with a brief exhortation to you regarding the pattern of a true biblical ministry.
मैं एक बाइबल पे आधारित सच्ची सेवकाई के संबंध में आपको एक उत्साह का वचन देना चाहता हूं जाने से पहले.
On several occasions, you know, the Apostle Paul encouraged and exhorted us to look at his life and follow his example.
बहुत सारे समयों में पौलुस ने लोगों से कहा, मेरे जीवन को देखो और मेरा अनुकरण करो. कई बार कहा पौलुस ने.
And even though he was an apostle and a teacher, there are certain practices and principles in his life that are very useful for us to study.
यद्यपि पौलुस एक प्रेरित था और पौलुस एक विशेष शिक्षक था, लेकिन उसके जीवन के कई सिद्धांत हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं सीखने के लिए और उनका अनुकरण करने के लिए.
Now in the last couple of years, we've looked at two of those very important passages where Paul sets forth his life and ministry.
पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने कम से कम दो विभिन्न स्थानों को देखा है, समझा है, पौलुस की सेवा को समझने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए.
And of course, that is Acts chapter 20 and 1 Thessalonians chapter 2.
याद है फिर तो काम उसका 20वां अध्याय और पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय.
And if you are a preacher, pastor, or teacher, you need to spend much time studying those passages.
यदि आप एक पासवान हैं, शिक्षक हैं, प्रचारक हैं, तो आपको समय व्यतीत करना चाहिए इन स्थलों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए.
For there the apostle Paul shares the motives of his heart.
क्योंकि पौलुस प्रेरित यहाँ पे अपने हृदयों की अभिप्रायों या अभिलाषाओं या उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है.
Shares the message that he preaches.
और फिर जो संदेश वो प्रचार करता है उसके बारे में भी लोगों को बताता है.
The method or the manner of his ministry.
और फिर वो अपनी सेविकाई की प्रणाली या प्रक्रिया या तरीके को भी बताता है हमें.
Paul told Timothy, "Follow my example."
पौलुस ने तिमोथियुस से कहा, मेरे उदाहरण का पालन करो, अनुकरण करो.
He told the Corinthians to imitate me as I imitate Christ.
और पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों से कहा, मेरा अनुकरण को जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ, पालन करता हूँ.
He told the Philippians what you've learned and heard and seen and observed in me, do these things.
उसने फिलिपियों के लोगों से कहा, उसने विश्वास से कहा कि जो तुमने मेरे में देखा है, समझा है, जाना है, वैसे ही तुम भी करो.
Our first great example, of course, is the Lord Jesus Christ.
हमारा सबसे महान उदाहरण वास्तव में तो अवश्य है कि यीशु मसीह है.
Peter said Christ suffered for us, leaving an example that we should follow in his steps.
पत्रस ने कहा, मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बना दे और अब हम उसके पीछे पीछे चलें.
And many of the exhortations in the New Testament regarding practical living are what we call Christ-centered or Christ-focused.
और बहुत सारे नए नियम में व्यवहारिक जीवन से संबंधित जो बातें हैं वो मसीह की ओर केंद्रित है और मसीह की ओर उनका ध्यान अग्रसर है.
For example, husbands are to love their wives as Christ loved the church.
उदाहरण के तौर पे, हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम करो जैसे कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया.
We are to forgive one another just as God in Christ has forgiven us.
हमें एक दूसरे को क्षमा करना है जैसे परमेश्वर ने मसीह में होकर के हमें क्षमा किया है.
And we must look closely and continually at the Lord Jesus, not only for the gospel but also for a pattern of life.
हमें यीशु मसीह की ओर नियमित तौर से लगातार देखते रहना है, सुसमाचार के केवल के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे व्यवहारिक मसीही जीवन के नमूने के लिए भी.
But there's another passage in which Paul, to some degree, shares something of his heart, his life, and his ministry.
लेकिन एक और स्थल है प्रेरितों में थिस्सलुनीके के अलावा, एक और स्थल है जहां पे पौलुस अपने जीवन के नमूने, प्रक्रिया और तरीके के बारे में बात करता है.
We want to be useful preachers.
और अगर हम उपयोगी प्रचारक बनना चाहते हैं,
if we want to be true pastors,
और अगर हम सच्चे पासवान बनना चाहते हैं,
if we want to know the blessing and grace of God,
और हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को जानना चाहते हैं,
we must look to the Lord Jesus Christ,
तो हमें मसीह यीशु की ओर देखना है,
and we must follow the example of godly men,
और हमें यीशु मसीह और उन उन ईश्वर भक्त पुरुषों के उदाहरण के पीछे चलना है।
I encourage you to spend much time in meditation and prayer over Acts chapter 20 and 1 Thessalonians chapter 2.
और मैं चाहता हूं कि प्रेरितों काम उसका 20वां अध्याय और पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरे अध्याय में आप बहुत समय व्यतीत करें और उसका मनन करें, अध्ययन करें।
I've been preaching and teaching for 40 or 45 years, but I consistently return to meditate on those passages.
मैं लगभग 40 या 45 साल से सेवकाई कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं पलट के उन स्थलों पर दोबारा जाता रहता हूं अक्सर।
But there's another passage that has been especially useful for me as well.
और एक और स्थल है मेरे लिए अत्यंत उपयोगी रहा है इस स्थल इन स्थलों के अलावा
and that is in the book of Colossians,
और वो है कुलूसियों की पत्री में
and the Apostle Paul in Colossians chapter 1
और कुलूसियों उसके पहले अध्याय में प्रेरित पौलुस
In Colossians chapter 1, verses 24 to 29, the Apostle Paul shares something of his life, ministry, and message.
Colossians के पहले अध्याय उसके 21 पद Colossians
chapter 1, 24 to 29.
Colossians के पहले अध्याय से 24 पद से लेकर 29 पद में पौलुस अपने सेवकाई के तरीके प्रणाली के बारे में कुछ बताता है अपने जीवन के बारे में बताता है
Now let's just make a few informal observations about this passage for our own usefulness.
आइए हम लोग इस स्थल के से कुछ बातों को देख लें हमारे सेवा के लिए जो उपयोगी हो सकती हैं
That we might be encouraged and exhorted to have this same kind of ministry.
ताकि हम उत्साहित हो सकें और हमें उभारा जा सके इसी तरह की सेवकाई के लिए
Look first of all at verse 24.
सबसे पहले मेरा 24 पद को आप देख लीजिए
The Apostle Paul willingly embraced and rejoiced in hardship and suffering for the cause of Christ.
Paulus यहाँ पे स्वेच्छा से और आनंद के साथ मसीह के लिए क्लेशों को उठाने के लिए सहने के लिए तैयार है सुसमाचार के खातिर
He says he rejoiced in his sufferings.
वो कहता है कि उसने अपने क्लेशों में आनंद बनाया है
And he willingly accepted those sufferings.
और उसने अब स्वेच्छा से उन क्लेशों को सह लिया है या ग्रहण कर लिया है
And he was willing to do his part to suffer on behalf of the church.
और वो उन क्लेशों को कलीसिया के खातिर सहने के लिए तैयार है
That's important that we understand what Paul means here and what Paul does not mean here.
और ये आवश्यक है कि हम यहाँ पे समझ जाएं कॉल पॉलुस का अर्थ क्या है वो कहना क्या चाह रहा है वो कहना नहीं चाह रहा है क्या कहना चाह रहा क्या नहीं कहना चाह रहा है
He said, I rejoice in my suffering for your sake in my flesh I do my share on behalf of his body the church filling up what is lacking in Christ's affliction.
और वो कहता है मैं अपने दुखों में जो तुम्हारे लिए उठाता हूं आनंद करता हूं मसीह के क्लेशों की घटी को उसकी देह अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूर्ण करता हूं
What does Paul mean?
और पौलुस का मतलब क्या है यहाँ
पे? Does he mean Christ's redemptive suffering is not complete and he himself is seeking to finish it?
और क्या वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह का जो छुटकारे का कार्य दुख उठाने में उसके शरीर में कम रह गया है अब वो उस छुटकारे के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है क्या वो ये कह रहा है
No.
नहीं
Listen carefully.
ध्यान करिए वो छुटकारे के काम की बात नहीं कर रहा है
Christ suffered redemptively in his physical body.
यीशु मसीह ने छुटकारे के काम के हेतु अपने शरीर में सह लिया दुख उठा लिया उस काम को पूरा कर दिया
On the cross,
क्रूस के पर,
and that work is finished.
और वो काम दुख उठाने का काम छुटकारे के हेतु शरीर में क्रूस के ऊपर पूरा हो चुका है हो गया खत्म समाप्त
we must understand this truth.
हमें इस तथ्य को समझना है
But listen carefully, second of all,
लेकिन ध्यान से सुने इस बात को कि दूसरी बात
Christ suffers representatively in his spiritual body when they endure persecution and difficulty.
लेकिन मसीह जो है प्रतिनिधित्व के तौर पे प्रतिनिधि के रूप में दुख उठाता है अपनी देह में जब उसकी देह कलीसिया दुख उठाती है. Can you say that whole thing again, please?
In the church, his spiritual body.
कलीसिया जो कि उसकी देह है, आत्मिक देह है.
And these sufferings are not finished.
यीशु मसीह अभी भी प्रतिनिधित्व के तौर पर प्रतिनिधि होने के नाते दुख उठाते हैं अपनी देह में जो कि कलीसिया है, जो कि उसकी आत्मिक देह है, उसमें अभी भी दुख उठाते हैं. और ये दुख उठाने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि उसकी देह अभी भी यहां पे है, कलीसिया अभी भी यहां पे. तो कलीसिया जब जब दुख उठाती है तो आत्मिक तौर से वो यीशु मसीह की देह है और यीशु मसीह उसमें दुख उठा रहे हैं उसका प्रतिनिधि होने के नाते.
These sufferings are redemptive. These sufferings are not redemptive.
और ये जो पहली वाली जो दुख उठाना है वो उद्धार के निमित्त है, छुटकारे के लिए है. जो दूसरा वाला दुख उठाना है वो उद्धार के निमित्त नहीं है लेकिन प्रतिनिधित्व के रूप में, वो हमारा प्रतिनिधित्व करें क्योंकि वो कलीसिया के कस्तर हैं. इसलिए फर्क समझ आ रहा है कि नहीं समझ, हल्का सा फर्क समझ आ रहा है, हल्का सा फर्क है लेकिन बहुत जरूरी इस फर्क को समझना.
His suffering on the cross in his own physical body is finished and complete.
और क्रूस के ऊपर उसका जो दुख उठाना है हमारे लिए उद्धार के खातिर, क्रूस के ऊपर शरीर में छुटकारे के खातिर जो दुख उठाने का काम था वो पूरा हो चुका है. एक बात स्पष्ट, एक बात समझ आइए, क्रूस के ऊपर दुख उठाने का काम छुटकारे के लिए क्रूस पे पूरा हो चुका है. ठीक है, वो हो गया 2000 साल पहले, हो गया, खत्म हो गया. इतना समझ गए कि नहीं समझ गए?
We cannot add to those redemptive sufferings.
वो छुटकारे के हेतु, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, पापों की क्षमा के लिए, अब हम उस काम में कुछ नहीं जोड़ सकते हैं. उस दुख उठाने में हम कुछ नहीं जोड़ सकते, वो हो गया है, खत्म हो गया, हो चुका.
He said on the cross, it is finished.
याद है यीशु मसीह ने इसीलिए क्रूस के पे कहा था, पूरा हुआ. क्या पूरा हुआ?
Raised him from the dead.
और उसके बाद क्योंकि छुटकारे का काम पूरा हो गया इसलिए प्रभु ने उसको मृतकों में से जिला दिया.
And by one offering for all times, he has fully redeemed his people and now is seated at the right hand of God.
और एक बलिदान के द्वारा एक बार में हमेशा के लिए उसने सारे लोगों को जो उसके हैं उनको छुड़ा लिया है, उनके मुक्ति का मार्ग खोल दिया है. अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है उस कार्य को पूरा करने के बाद.
But Christ is suffering representatively in and through the sufferings of his church that are not yet finished or filled up.
और लेकिन अब इस समय यीशु मसीह एक हमारे प्रतिनिधित्व होने, प्रतिनिधि होने के नाते अभी भी आत्मिक शरीर में दुख उठा रहे हैं और वो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है.
When Christ appeared to Paul on the Damascus road.
आपको याद है यीशु मसीह ने जब शाउल को दमिश्क के मार्ग पे दर्शन दिया था तो क्या कहा था यीशु मसीह ने?
And Paul had been persecuting the church and he was going to persecute the church.
और आपको याद होगा तो पौलुस जो उस समय तक कलीसिया को सता रहा था और उस समय दमिश्क के मार्ग पे शाउल कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था.
What did Jesus ask him?
तो यीशु मसीह ने उस समय उससे क्या कहा?
Paul, Paul, why are you persecuting the church?
आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा दर्शन देके कि शाउल, पौलुस, शाउल, शाउल तुम मुझे कलीसिया को क्यों सताते हो?
That what he said?
क्या यीशु मसीह ने कहा तुम कलीसिया को क्यों सताते हो?
What did he say?
उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझे क्यों सताते हो?
Christ was suffering non-redemptively in and through the persecution of the church.
यीशु मसीह उस समय गैर छुटकारे के कार्य के रूप में दुख उठा रहे थे जब पौलुस उसकी कलीसिया को दंडित कर रहा था या प्रताड़ित कर रहा था प्रतिनिधि होने के नाते.
And on the last day, when he separates the sheep from the goats, he will say to those that did well, that you did this as unto me.
और इसीलिए याद है आखिरी के दिन में जब परमेश्वर बकरियों को भेड़ों से अलग कर देंगे तो यीशु मसीह कहेंगे इनके साथ तुमने जो किया तुमने मानो ऐसे किया मेरे साथ किया.
And those that did not serve the church or did not care for the needy, he said, you did not do it unto me.
और इसमें से अगर कलीसिया के लोग हैं जो गरीब लोग हैं या दुखी लोग हैं या जो आवश्यकता में, अगर तुमने उनकी देखभाल नहीं की, उनकी चिंता नहीं की, तो मानो तुमने ऐसा किया कि मेरी देखभाल नहीं की, मेरी चिंता नहीं की, क्योंकि कलीसिया की नहीं चिंता हो रही है.
So Jesus Christ is connected spiritually to the church, which is his body.
और यीशु मसीह कलीसिया से, जो कि उसकी देह है, आत्मिक तौर से जुड़े हुए हैं कलीसिया से.
And when one member suffers, all the body suffers.
और हम ये जानते हैं जब कलीसिया का एक सदस्य को दर्द होता है, दुख उठाता है, तो संपूर्ण शरीर दुख उठाता है.
And when the church is afflicted or persecuted, it is as unto or like they are doing it to Christ.
और जब कलीसिया प्रताड़ित की जाती है, जब कलीसिया दुख उठाती है, तो ऐसा होता है मानो मसीह को दुख दिया जा रहा है, मसीह प्रताड़ित हो रहा है, मसीह को दर्द हो रहा है. समझ में आया या फर्क समझ में आया कि नहीं समझ में? प्रतिनिधि के तौर पे, क्योंकि वो हमारा सर है.
And Paul says these non-redemptive afflictions of Christ are not finished.
और पौलुस कह रहा है कि ये जो इस तरह के दुख उठाना है यीशु मसीह के आत्मिक देह में, जिनका छुटकारे से लेना देना नहीं है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है.
So no suffering of man.
तो मनुष्य कोई भी दुख उठाना, कलीसिया का कोई भी दुख उठाना,
in any way adds to the redemptive work of Jesus Christ.
वो किसी भी तरह से मसीह के छुटकारे के काम जो क्रूस पे किया था उसमें जोड़ नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते हैं, किसी
there,
भी तरह से नहीं जोड़ सकते हम लोग.
But there is a sense in which Jesus continues to suffer in and through his church.
लेकिन एक मायने में हमारे प्रतिनिधि होने के कारण यीशु मसीह अभी भी कलीसिया में, कलीसिया के द्वारा अभी भी आत्मिक तौर से दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं. यहाँ पे वही पॉल कह रहे
हैं,
और मैं फिर से कहना चाहता हूँ दोबारा, जो दुख अब यीशु मसीह उठा रहे हैं वो हमारी मुक्ति के लिए नहीं है, छुटकारे के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए नहीं है, उद्धार के लिए नहीं है.
They do not add to the work of Christ on the cross.
ये जो दुख उठाने का काम है, अब वो काम जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया था उस पर कुछ जोड़ते नहीं, बढ़ाते नहीं है.
So how could Paul be willing to rejoice in his suffering?
तो फिर क्यों करके पौलुस अपने दुखों में आनंद उठाने के लिए तैयार हो सकता है?
Because it was on behalf of Jesus Christ and his church.
क्योंकि वो यीशु मसीह के खातिर और उसकी कलीसिया के खातिर कर रहा है वो.
And he counted it a great privilege and blessing to be willing to suffer on behalf of the church of Christ.
और ये कलीसिया के लिए दुख उठाना और मसीह के खातिर दुख उठाने को अपने लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात समझता है, मानता है.
And if you're going to be a pastor and a preacher, you need to understand this.
और यदि आप प्रचारक बनना चाहते हैं या सुसमाचार का काम करना चाहते हैं, तो आपको इस बात को समझना है.
You may have difficulties and hardships.
आपके सामने मुश्किलें आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं.
You will not have the difficulties and hardships that Paul had.
और जो मुश्किलें और दुख परेशानियां आपके सामने आती हैं, वो पौलुस जैसी नहीं है.
But you will have some difficulties in the Christian ministry.
लेकिन आपके जीवन में कुछ परेशानियां, मुश्किलें अवश्य आएंगी, यद्यपि पौलुस जैसे ना हो.
We need to make sure we're not suffering on account of our own sin, our own foolishness, our own mistakes.
लेकिन हमको और आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि जो दुख हम उठा रहे हैं वो हमारे स्वयं के कारण है, हमारे स्वयं की मूर्खता के कारण है, हमारे स्वयं की गलतियों के कारण हम दुख उठा रहे हैं.
We are suffering for the truth of God.
ऐसा होना चाहिए कि हम वास्तव में वास्तविकता के लिए, परमेश्वर के सत्य के लिए दुख उठा रहे हैं.
For the word of God.
हम परमेश्वर के वचन के लिए दुख उठा रहे हैं.
We are suffering for the honor of Christ.
हम मसीह के आदर सम्मान के लिए दुख उठा रहे हैं. ऐसा होना चाहिए.
Suffer because of your own foolish mistake.
हम सब लोग अक्सर दुख उठाते हैं अपने स्वयं की मूर्खता की गलतियों की वजह से.
That's why it's important that you must be a holy man.
इसीलिए आवश्यक है कि हम पवित्र लोग हों.
That's why it's important that you know the word of God.
इसीलिए जरूरी कि हम परमेश्वर के वचन को जानें.
So if people oppose you,
जब लोग हमारा विरोध करें,
they're not opposing your bad character.
ऐसा ना हो कि वे हमारे बुरे चरित्र का विरोध कर रहे हैं.
They're not opposing your wrong teaching.
ऐसा ना हो कि हमारी गलत शिक्षा का विरोध कर रहे हैं.
They're not opposing your foolish mistake.
वो हमारे मूर्खता की गलतियों का विरोध ना कर रहे हो.
But Paul was willing to suffer for the sake of the body of Christ.
लेकिन पौलुस मसीह की कलीसिया देह के खातिर दुख उठाने के लिए तैयार था.
And if we are going to serve and follow Jesus Christ, we must have the same attitude as well.
और अगर हम यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो वही स्वभाव, वही इच्छा मनसा हमारे भीतर भी होना चाहिए.
So you do understand what Paul is saying and what he's not saying in verse 24.
तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप 24 पद में समझ गए कि पौलुस कह क्या रहे हैं और पौलुस क्या नहीं कह रहा. आप इस बात से समझ गए कि नहीं समझ गए?
Any questions on verse 24?
24 पद के बारे में कोई प्रश्न तो नहीं है आपको कि कैसे पौलुस अपनी देह में मसीह के दुखों को पूरा करता है कलीसिया के खातिर? अब समझे इस बात को, छुटकारे के लिए नहीं लेकिन प्रतिनिधि के रूप में आत्मिक तौर से. कुछ पूछना है डीके भाई? कुछ पूछ रहे हैं 24 पद के बारे में? हाँ जी बोले. नहीं है. तो जब तक कलीसिया इस दुनिया में है, विश्वास के खातिर हमको दुख उठाना पड़ेगा और कलीसिया दुख उठाती रहेगी. और जब जब कलीसिया दुख उठाती है, मानो यीशु मसीह दुख उठा रहे हैं. तो पौलुस कलीसिया के लिए दुख उठा रहा है. जो मान लीजिए अगर 1,000 किलो दुख उठाना है कलीसिया को, मान लीजिए, तो उस 1,000 किलो में 1 किलो पौलुस, हम उदाहरण के लिए समझाने के लिए मान लीजिए, अगर कोई, हम कोई नंबर नहीं दे सकते हैं, हम कोई वो नहीं कर सकते, मान लीजिए, तो उसको पौलुस अपना काम पूरा कर रहा है. एक दिन जब 1,000 किलो पूरा हो जाएगा, मसीह वापस आएंगे, कलीसिया उनके साथ होगी, तब तक के लिए, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक कलीसिया दुख उठाती रहेगी. जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा, तब तक विश्वासी लोग दुख उठाएंगे, सेवक लोग दुख उठाएंगे अपने सुसमाचार के खातिर. वही काम पौलुस कर रहा है. अगर यीशु मसीह आज यहां पे होते तो दुख उठा रहे थे, लेकिन आज यीशु मसीह नहीं है. यीशु मसीह के बदले उनकी कलीसिया दुख उठा रही है. ठीक है?
And Peter says this.
तो पत्रस ये बात कहता है.
If you suffer for the sake of Christ, you are blessed, for the Spirit of God and of glory dwells upon you.
पत्रस कहता है कि अगर तुम यीशु मसीह के खातिर दुख उठाते हो, तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा की आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है.
But he says, let us make sure that we do not suffer for being a foolish or immoral man.
और लेकिन पौलुस कहता है, हम इस बात को ध्यान अवश्य दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम दुख उठा रहे हो अपनी नैतिकता के कारण और अपनी मूर्खता के कारण.
But if any man suffers as a Christian, let him in that name glorify God.
लेकिन वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक मसीही होने के नाते दुख उठाता है, तो वो उस बात में परमेश्वर की महिमा करे.
Christ is suffering through his church.
यीशु मसीह आज उसकी कलीसिया में होकर के दुख उठा रहे हैं आज भी.
Those sufferings are not redemptive.
लेकिन यह दुख उठाना यीशु मसीह का कलीसिया के द्वारा छुटकारे के खातिर नहीं है, छुटकारे के हेतु नहीं है.
And if we identify with Jesus Christ,
और अगर हम अपनी पहचान यीशु मसीह के साथ करते हैं,
if we love his church,
और अगर हम यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं,
we will be willing to rejoice even in the midst of difficulty.
तो मुश्किलों के बीच में भी हम खुश होंगे और आनंद उठाने के लिए तैयार होंगे.
So don't go out and preach this.
तो बाहर जाके ये मत प्रचार करिए.
If you suffer for Jesus,
अगर आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे,
you are paying for it, redeeming your own sins.
तो आप अपने पापों का छुटकारा उठा रहे हैं और अपने पापों की कीमत चुका रहे हैं, ये मत बोलेगा.
That is not what we're saying.
ये हम नहीं कह रहे हैं. हम अपने दुखों को, शरीर में दुखों को, अपने पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए नहीं उठाते हैं.
But a true ministry.
लेकिन एक सच्ची सेवा,
is willing to fully identify with Jesus Christ and his people.
लेकिन एक सच्ची सेवकाई सेवा, यीशु मसीह की सेवा और उसके लोगों के साथ पूरी तरह से पहचान करने के लिए तैयार रहती है.
Even to the point of suffering and difficulty.
इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि हमें दुख भी उठाना पड़ेगा, यहां तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है.
So that is a mark of a true biblical ministry, a willingness to identify with Jesus Christ and his church no matter what the difficulty.
एक सच्ची सेवकाई का चिन्ह क्या है, प्रमाण क्या है? वो है कि चाहे जैसी भी मुश्किलें आए, परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, उन सब के मध्य में भी वो यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है.
Now look at verse 25.
और 25 पद में देखिए,
मेरे साथ another informal observation.
आइए हम लोग एक और इनफॉर्मल, अनौपचारिक
ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं.
अनदर पॉइंट,
एक और बात देखते हैं।
Look at another principle of a true, another characteristic of a true biblical ministry.
एक और अवलोकन करते हैं, एक और बात देखते हैं, एक और विषय देखते हैं सच्ची मसीही सेविकाएं के संबंध में।
A true biblical ministry recognizes that the man that has a true biblical ministry recognizes it is a stewardship given by God.
एक सच्ची मसीही सेवकाई इस बात को मान लेती है कि उसको ये परमेश्वर की ओर से भंडारीपन दिया गया है, सेवक ठहराया गया है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है ये जिम्मेदारी।
It is a ministry God has given to him on behalf of the church.
और ये सेवकाई परमेश्वर के द्वारा उनको दिया गया है कलीसिया के खातिर, कलीसिया के लिए।
He is truly called.
उसको वास्तविक तौर से बुलाया गया है।
He is a servant of Christ.
वो मसीह का सेवक है।
He is a steward of the mystery of God.
वो परमेश्वर की रहस्यों का भंडारी है।
And he has been entrusted with the responsibility to minister to the church of God.
और उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि परमेश्वर की कलीसिया की वो सेवकाई करे, सेवा करे।
And he wants to be faithful to that stewardship.
और वो जो भंडारीपन उसको दिया गया है उसके प्रति वो विश्वास योग्य रहना चाहता है, जो भी काम उसको दिया गया उसके प्रति।
So our second point is this. A true biblical ministry is faithful to the stewardship that has been given to it by God.
तो हमारा दूसरी बात यह है कि एक सच्ची सेवकाई जो सच्चा परमेश्वर की ओर से दी गई सेवकाई है, परमेश्वर ने जो काम दिया है उसके प्रति वो वास्तविक भंडारीपन के प्रति विश्वास योग्य बना रहता है।
And one of the primary parts of that stewardship is to fully carry out the preaching of the word of God.
और इस भंडारीपन के कार्य के अंतर्गत एक मुख्य बात यह है कि वो पूर्ण रूप से जो प्रचार का काम दिया गया है, वचन का काम, वो करता है।
He is committed to the word of God.
वो परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहता है।
And he is willing to preach the word of God.
वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए तैयार रहता है।
And he is willing to fully fulfill and carry out that responsibility.
और वो जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तरह से करने के लिए वो तैयार रहता है।
So if you are a true preacher,
यदि आप सच्चे प्रचारक हैं,
if you are called by God,
अगर आप प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं,
if you are gifted by God,
अगर आपको परमेश्वर के द्वारा दान मिला है,
not a false preacher,
एक झूठे प्रचारक नहीं,
not an uncalled preacher,
एक ना बुलाए हुए प्रचारक नहीं,
but a true preacher,
लेकिन एक सच्चे प्रचारक,
or you want to be a true preacher,
और अगर आप एक सच्चे प्रचारक होना चाहते हैं,
you must be willing to identify fully with Jesus Christ and His church,
तो आपको यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के साथ संपूर्णता के साथ पहचान बनाने के तैयार होना है,
and you must be willing to faithfully fulfill the stewardship that God God has given to you.
और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने भंडारीपन की आपको दी है आप उसको ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए आपको।
Even though it may involve suffering or difficulty.
यद्यपि इसमें मुश्किल और दुख उठाना शामिल हो सकता है।
You do not serve yourself.
और आप अपनी स्वयं की सेवा नहीं करते।
You do not preach yourself.
हम स्वयं का प्रचार नहीं करते।
You serve Christ and His church.
लेकिन हम कलीसिया और उसके मसीह की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं।
The word of God.
और हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं।
And you recognize this.
और हम जान जाते हैं इस बात को।
I may be poor.
हम गरीब हो सकते हैं।
I may be uneducated.
हो सकता है मैं अनपढ़ हूँ।
I may not know much.
हो सकता है मुझे नहीं मालूम ज्यादा।
He has called me,
लेकिन प्रभु ने मुझे बुलाया
है। He has entrusted me with a stewardship,
और उसने हमें भंडारीपन दिया है।
I must be faithful,
और हमें विश्वासयोग्य होना है।
I must be accurate,
और हमें सटीक होना है।
I must fully fulfill what God has called me to do,
और ताकि जो भी परमेश्वर ने मुझे बुलाया है करने के लिए उसको मैं पूरा करूं।
Number three.
तीसरी बात।
Look at verse 26 and 27.
देखिए 26 और 27 पद।
A man that is called by God fully and completely understands the purposes of God.
जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है वो परमेश्वर के उद्देश्यों को संपूर्णता से और पूरी तरह से समझता है।
He has an understanding of the word of God.
वो परमेश्वर के वचन को समझता है.
He has an understanding of the promises of God.
वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को समझता है.
He understands the flow of redemptive history.
वो छुटकारे के इतिहास के प्रवाह को समझता है.
He sees God's eternal purpose from eternity past to eternity future.
वो अनंत काल पूर्व से अनंत काल अंत तक के परमेश्वर के कार्य को समझता है.
He understands what the mystery of God is.
और वो समझता है कि परमेश्वर के रहस्य क्या है.
And the mystery of God is the gospel and what the gospel produces.
और परमेश्वर का रहस्य सुसमाचार है और सुसमाचार जो चीजों को उत्पन्न करता है ये है परमेश्वर का रहस्य और वो उनको समझता है.
And this was all hidden in past time.
और यद्यपि ये रहस्य भूतकाल में छिपा हुआ था पहले.
It was revealed in types and shadows and promises and prophecies.
लेकिन नमूनों में और तरीकों में और भविष्यवाणियों में और इन सारी बातों में उसको प्रकट किया गया था.
And now what is it that is revealed?
और अब क्या है जो हमारे सामने प्रकट कर दिया गया
है? It is Jesus Christ and His gospel.
वह है यीशु मसीह और उसका सुसमाचार.
The promised Messiah.
जो प्रतिज्ञा किया वो मसीह
है. And His holy life.
और उसका पवित्र जीवन.
And His sacrificial death.
और उसका बलिदान त्याग और मृत्यु.
And His glorious resurrection.
और उसका महिमामय पुनरुत्थान.
And all the blessings that flow forth from it.
और वे सारी आशीषें जो इन बातों में से होकर निकलती हैं.
Individual blessings.
व्यक्तिगत आशीषें.
And corporate blessings.
और सामूहिक आशीषें.
Our own justification and adoption.
हमारा स्वयं का धर्मी ठहराया जाना और लेपालक पर.
And the unity of all men, Jew and Gentile alike, in Jesus Christ.
और यीशु मसीह में सारी मानव जाति की एकता, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो गैर यहूदी हो.
And a true preacher.
और एक सच्चा प्रचारक.
And a true biblical ministry.
और एक सच्चे बाइबल प्रचारक.
Built on the foundation of understanding the unfolding of the purposes of God.
और वो परमेश्वर के खुली हुई उद्देश्यों के पर आधारित होती है.
Notice verse 26.
ध्यान दीजिए 26 पर.
This is the mystery that had been hidden from the past ages generated, but now has been manifest to his saints.
अर्थात उस रहस्य को जो युगों पीढ़ियों से गुप्त रहा था पर अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है.
So he understands the Old Testament promises and prophecies.
और हम पुराने नियम के जो भविष्यवाणियां हैं और जो बातें हैं उनको समझते हैं.
He is a student of the word and the purposes of God.
वो परमेश्वर के उद्देश्य जो खुलते हैं हमारे सामने उनका भंडारी है, उनको समझता है.
Able to unfold the truth of the word of God concerning Jesus Christ.
यीशु मसीह के संबंध में जो सत्य परमेश्वर के वचन में पाया जाता है उनको हम लोग सामने खोल के रखने पाते हैं.
He is able to say like Peter did on the day of Pentecost.
और पेंतेकोस्त के दिन जिस तरह से पत्रस ने कहा था उसके समान लोग कहने चाहता है.
This Jesus whom you crucified, God has made him both Lord and Christ.
जिस मसीह को तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया, जिस यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया उसको परमेश्वर ने मसीह और प्रभु करके तुम्हारे सामने रख दिया है.
A true preacher understands he's involved in something that is bigger than he is.
और जो सच्चा प्रचारक है वो इस बात को समझता है कि जिस चीज में वो शामिल है वो उससे कहीं बढ़ करके है.
A true preacher understands that he is involved in something that the world cannot see or understand.
और एक सच्चा प्रचारक है वो इस बात को समझता है जिस चीज में वो शामिल है वो इतनी बड़ी बात में शामिल है जिसको दुनिया नहीं समझ सकती.
Preacher understands that he is involved in God's wonderful purpose that will unfold down through history.
और एक सच्चा प्रचारक ये जानता है कि वो परमेश्वर के उन अद्भुत उद्देश्यों में शामिल है जो इतिहास में होकर के लोगों के सामने प्रकट की गई है.
He understands that he's unknown to the world.
वो ये
known by God.
वो जानता है कि संसार नहीं समझता है लेकिन परमेश्वर इस बात को समझता है.
And he is able to clearly unfold what that mystery is.
और वो स्पष्टता के साथ लोगों के सामने उस रहस्य को प्रकट कर सकता है, खोल सकता है, बता सकता है कि है क्या आखिर वो रहस्य.
Verse
27. 27.
And what is that mystery?
और क्या है वो रहस्य?
It is the riches of the glory of this mystery even among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
वो रहस्य है कि गैर यहूदियों में भी महिमा का धन क्या है? वो ये है कि मसीह तुम में वास करता है और यही महिमा का धन है.
This mystery that has been hidden and now is revealed is that God is going to include the Gentiles into his purposes.
वो कह रहा है ये रहस्य क्या था? वो रहस्य ये था जो छिपा हुआ था अब तक, कि वो ये है कि गैर यहूदी लोग भी परमेश्वर की योजना में शामिल किए जाएंगे.
The middle wall has been broken down.
और इफिसियों के अनुसार जो बीच की जो दीवार है वो तोड़ दी गई है.
Jesus Christ was slain and did redeem by his blood men from every kindred, tribe, nation and tongue.
और यीशु मसीह जिसको घात किया गया उसके लहू के द्वारा परमेश्वर हर एक जाति, भाषा, कुल से लोगों को बचा रहा है छुड़ा
रहा है God is not the God of the Jew only but also the God of the Gentile
और परमेश्वर अब सिर्फ केवल यहूदियों का ही परमेश्वर नहीं लेकिन परमेश्वर गैर यहूदियों का भी परमेश्वर है
And this gospel is to proclaim throughout the entire world
और ये सुसमाचार संपूर्ण संसार में फैलाया जाना चाहिए प्रचार किया जाना चाहिए
And Paul said this is the riches of the glory of the mystery
और पौलुस कहता है ये है महिमा का रहस्य की महिमा का धन
That Jesus Christ even comes to incorporate the Gentiles into the church.
कि परमेश्वर यीशु मसीह आते हैं और गैर यहूदियों को कलीसिया के भीतर लेकर के आते हैं.
And he is also enable. He is also planned and purposed to individually indwell the Gentile sinners.
और ना सिर्फ गैर यहूदियों को वो कलीसिया के भीतर लेकर आते हैं, लेकिन उसने ये योजना बनाई और उसका ये उद्देश्य था कि वो व्यक्तिगत तौर से गैर यहूदियों के हृदय में जाकर के वास करेगा
Now what does that mean for you?
और इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए
Some Indians are going to be saved.
और कुछ भारतीय लोग बचाए जाएंगे
Some Indians are included in the purposes of God.
कुछ भारतीय लोग परमेश्वर के उद्देश्यों में शामिल किए जाएंगे
Some Indians have been bought by the blood of Jesus Christ.
कुछ भारतीय लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं
Some Indians out there yet have to believe.
इसका यह मतलब है कुछ भारतीय लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी भी विश्वास करना बाकी रह गया है
to include them into this church.
और परमेश्वर एक दिन उनको अपनी कलीसिया में शामिल कराएगा
And you have the great privilege of proclaiming that mystery to the world.
और आपके पास एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप इस रहस्य को संसार के सामने प्रकट कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं उसका
So a true preacher is willing to identify with Jesus Christ and his church in the sufferings.
और एक सच्चा प्रचारक वो है जो यीशु मसीह के साथ और उसकी कलीसिया के दुखों के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है
A true preacher understands and is faithful to a stewardship he has received from God.
और एक सच्चा प्रचारक वो है जो परमेश्वर की ओर से रहस्यों का भंडारीपन उसको दिया गया है उसको वो समझता है और बताने के लिए तैयार है
And a true preacher understands the content of the mystery of God's eternal purpose.
और एक सच्चा प्रचारक परमेश्वर के रहस्यों के का जो विषय वस्तु है सामग्री है उसको समझता है और बता सकता है
Now notice verse 28.
और याद ध्यान दीजिए यहाँ पे 28 पद को
A fourth principle or observation.
एक और चौथा सिद्धांत या आज जो बात को हम देख रहे हैं अवलोकन कर रहे हैं जिसका
A true preacher, a true minister ministers the word of God in a special and peculiar manner.
परमेश्वर के वचन का सच्चा सेवक वचन को विशेष तौर से और एक अद्भुत तौर से उसका प्रचार करेगा
In a peculiar manner for a specific purpose.
एक विशेष तौर से एक अद्भुत तौर से या अनोखे तौर से एक विशेष सेवा के लिए
A true biblical ministry is characterized by a peculiar manner for a specific purpose.
What do you mean by peculiar?
A special, a particular, a different from any other way.
तो एक परमेश्वर का सेवक अपनी सेविका को एक विशेष या अनोखे तौर से उपयोग करेगा परमेश्वर के द्वारा एक विशेष कार्य को करने के लिए
Notice several things, verse 28.
और ध्यान दीजिए यहाँ पे पद 28 पद
The main center focus or primary content of this ministry.
और यहाँ पे जो मुख्य केंद्र है या जो मुख्य विषय है सामग्री है विषय वस्तु है इस सेविकाई की क्या है 28 पद में
He said, we proclaim him.
वो कहता है कि हम उसका प्रचार करते हैं
Look number two at the special manner of this ministry.
और यहाँ पे देखिए एक विशेष तरीका प्रणाली इस सेविकाई का
He says, admonishing every man and teaching every man with all wisdom.
वो कहता है कि हम हर एक मनुष्य को चिताते हैं और समझ ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं
And look at number three, the special purpose or goal of this ministry.
और ध्यान दीजिए यहाँ पे सेविकाई का विशेष उद्देश्य लक्ष्य क्या है इस सेविकाई का.
So you have the content of the ministry.
तो आपके सामने यहाँ पे सेविकाई की सामग्री है या
the manner of the ministry.
या कार्य करने का तरीका है प्रणाली है सेविकाई का.
And the goal of the ministry.
ना और ना सिर्फ इतना लेकिन उस सेवा का लक्ष्य भी है हमारे सामने.
What is the content?
यहाँ पे इसकी सामग्री क्या है, क्या चीज फायदा है इसमें. हम उसका प्रचार करते हैं, किसके बारे में करते
हैं.
पौलुस ने इस बात का निर्णय कर लिया था कि वो लोगों के बीच में यीशु मसीह और क्रूसित मसीह को छोड़कर के किसी और के बारे में ना बात करें.
Paul said, no other foundation can a man lay other than that which has been laid, which is Christ. Jesus.
पौलुस कहता है कोई और बुनियाद को नहीं डाला जाता है जा सकता है, सिर्फ उस नींव को डाला जाएगा. वो कौन है? केवल यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और बुनियाद नहीं है.
Now Jesus in his cross is not all that you preach.
केवल यीशु मसीह और यीशु मसीह का क्रूस ही नहीं है सिर्फ जिसके बारे में हम प्रचार करेंगे हमेशा. केवल
first primary and foundational truth that you preach out of which all other truth does flow.
वो कौन सा सबसे पहला आधारभूत बुनियादी सत्य है जिसका आप प्रचार करेंगे, फिर जिसके बाद जिसमें से बाकी अन्य सत्यों का प्रवाह होगा.
And that's why you must study the life and the death and the resurrection of Jesus Christ.
इसीलिए हमें यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का अध्ययन करना है.
And that's why you must live in secret prayer and have personal communion with the living Christ.
इसीलिए हमें एकांत में प्रार्थना करना है और उस जीवित मसीह के साथ हमारी संगति सहभागिता होनी चाहिए.
And that is why you must pray for the power of the Spirit of God because his ministry is to lift up and glorify this Christ.
इसीलिए हमें मसीह इसीलिए हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि वो हमें सहाय करेगा मसीह को महिमान्वित करने के लिए, उठाने के लिए.
He said, we preach Christ.
वो कहता है कि मैं मसीह का प्रचार करता हूँ.
Christ living.
जीवित मसीह.
Christ dying.
यीशु मसीह का मरना.
Christ resurrected.
और मसीह का जी उठना.
Christ ascended.
और मसीह का ऊपर उठाया जाना.
Christ reigning.
और मसीह का
Christ returning.
और मसीह का वापस आना.
We preach the whole Christ.
हम संपूर्ण मसीह का प्रचार करते हैं.
Fullness of his life, death and resurrection.
और उसके मृत्यु, जीवन और पुनरुत्थान की परिपूर्णता का हम प्रचार करते हैं.
That is the content of a true biblical ministry. मैसेज
सच्चे बाइबल पे आधारित सेविकाएं की सेवा का ये असली विषय वस्तु है या सामग्री है.
Look at the manner of a true biblical ministry.
और ना सिर्फ विषय वस्तु लेकिन अब हम बात करेंगे सेवा के कार्य प्रणाली की, कैसे किया जाती है ये सेवा.
Two things.
दो बातें हैं.
Number one.
पहली बात.
Admonishing every man.
सारे मनुष्य को हम चिताएंगे.
Number two.
दूसरी बात.
Teaching every man.
सारे मनुष्य को हम सिखाएंगे.
Number three.
तीसरी बात.
Doing it with wisdom.
ये संपूर्ण ज्ञान से सिखाएंगे.
So he does two things.
दो बातें वो करता है.
To all men.
सब लोगों को.
With a, in a peculiar manner.
लेकिन एक विशेष अनोखे तरीके से.
He teaches every man.
वो सारे लोगों को सिखाएगा.
He seeks to give instruction to the mind of all believers.
वो ये प्रयास करेगी सारे विश्वासियों के मस्तिष्क को वो निर्देश दे सके.
What is teaching?
क्या है शिक्षा?
It's taking objective truth and explaining it to the mind of the believer.
वो ये है कि एक विशेष सत्य को लेकर के विश्वासियों के मस्तिष्क को समझाए, ज्ञान दे, बताए क्या है.
And you must be committed to a consistent ministry of systematic plain teaching of the word of God.
हमें और आपको परमेश्वर के वचन को नियमित तौर से क्रमबद्ध तरीके से लोगों को परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए तैयार होना है, वचन सिखाने के लिए तैयार होना है.
Do, just inform the mind, that's not all you do.
हम केवल लोगों के मस्तिष्क को ज्ञान नहीं देते, जानकारी नहीं देते, सिर्फ यही नहीं करते हम लोग.
What else does he say?
और क्या कहता है कि हम लोग क्या करते हैं?
Admonishing every man.
लेकिन हम लोगों को चिताते हैं, हर एक लोगों को चिताते हैं.
Encouraging men.
तो दूसरा इसका ये मतलब हम लोगों को उत्साहित करते हैं और कभी कभी डांटते भी हैं.
Warning men.
उन लोगों को चेतावनी भी देते हैं.
It means applying the word of God to the heart.
इसका ये मतलब है परमेश्वर के वचन को उनके हृदयों पे लागू करते हैं.
टीचिंग इनफॉर्म्स द माइंड.
और शिक्षा लोगों के दिमाग को जानकारी देता है.
प्रीचिंग अप्लाइज द ट्रूथ टू द लाइफ एंड टू द हार्ट.
लेकिन प्रचार करने में हम सत्य को लोगों के जीवनों और हृदयों पे लागू करते हैं.
ट्रू मिनिस्ट्री टीचेस सॉलिड बिब्लिकल कंटेंट.
और एक सच्चा बाइबल पे आधारित सेवकाई ठोस बाइबल की शिक्षा को सामग्री को विषय वस्तु को लोगों को लेके आता है.
True ministry has close and direct personal application.
और एक सच्चे बाइबल पर आधारित सेवकाई में लोगों के जीवन में नजदीकी के साथ और सीधे तौर पर लागू करना किया जाता है.
And if you can't teach the word of God,
अगर आप परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर सकते हैं,
gift,
अगर आपके पास वो दान नहीं है, अगर आप वो योग्यता नहीं है,
you're not willing to admonish people,
अगर आप लोगों को डांटने के तैयार नहीं
है, you don't have the courage to do so,
अगर आपके अंदर साहस नहीं ऐसा करने के लिए,
if you want to tickle men's ears,
अगर आप खाली लोगों के कानों खुजलाना चाहते हैं,
if you just want to teach them 1, 2, 3 a few little nice points on how to live and be a nice man,
अगर आप लोग केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बातें सिखाना चाहते हैं कि कैसे वो लोग अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं,
you cannot have a true biblical ministry,
तो फिर आपके पास सच्ची बाइबल पर आधारित सेविकाई नहीं हो सकती है.
And what is the goal?
लेकिन इन सब कामों का लक्ष्य अंतिम उद्देश्य क्या है?
So that we might present every man complete in Christ.
ताकि हम सारे व्यक्ति को, प्रत्येक लोगों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सकें.
Not some man.
कुछ लोगों को नहीं.
Every man.
सब लोगों को.
He is concerned about all the people of God.
वो सारे परमेश्वर के लोगों के लिए चिंता रखता है.
He knows their need.
वो उनकी आवश्यकताओं जानता है.
And he speaks to their condition.
और वो उनकी परिस्थिति के बारे में बात करता है.
And his purpose is to see all the believers growing in the likeness of Jesus Christ.
और उसका उद्देश्य ये है कि सारे विश्वासी लोग यीशु मसीह की समानता और स्वरूप में बढ़ते चले जाएं.
That is what he says in Ephesians chapter 4.
और यही वो कहता है इफिसियों के चौथे अध्याय में.
He gives pastors and teachers to the church.
इसीलिए वो कलीसिया को पासवान और शिक्षक देता है.
What do they do?
और वो क्या करते हैं पासवान शिक्षक लोग?
They teach and equip the people of God.
वो परमेश्वर के लोगों को सिखाते हैं और शिक्षा देते हैं और तैयार करते हैं. और परिणाम क्या होता है?
We all attain to the unity of the faith.
और यहाँ पे विश्वास की एकता उत्पन्न होती है.
To a mature man.
और एक और परिपक्व व्यक्ति बन जाते हैं.
To the measure of the stature of the fullness of Jesus Christ.
और यीशु मसीह के समान नाई हम बनते चले आते हैं.
He wants to see Christ formed in them.
वो चाहता है कि यीशु मसीह उनके भीतर दिखाई दे, बन जाए.
Not just that they believe in Christ.
केवल यीशु मसीह पे विश्वास ना करें ये लोग.
Not just that they grow in their communion with Christ.
केवल ये लोग मसीह के साथ संगति और सहभागिता में ना बढ़ जाएं.
But they grow in practical conformity to Christ.
लेकिन वो यीशु मसीह के समान व्यवहारिक तौर से उसके जैसे बनते चले जाएं.
This is the message and the manner and the goal of a true biblical ministry.
बाइबल पे आधारित सच्ची सेविकाई का ये तरीका है, लक्ष्य है और कार्य करने की प्रणाली है.
So a true preacher is willing to fully identify with Jesus Christ in his church.
एक सच्चा बाइबल का आधारित सेवक यीशु मसीह के साथ और उसकी कलीसिया के साथ वास्तविकता से पहचान करने के लिए तैयार रहता है.
A true preacher is willing to faithfully fulfill the stewardship that has been given to him by God.
जो परमेश्वर ने उसको भंडारीपन दिया है, एक सच्चा सेवक उसको ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए तैयार रहता है.
A true preacher has a deeper growing understanding of the purposes of God in Jesus Christ.
और एक सच्चा जो सेवक है यीशु मसीह में हो करके परमेश्वर की जो मनसाएं हैं, अभिप्राय हैं, उनको पूरा करने के लिए तैयार रहता है.
And a true preacher preaches a clear message in a proper manner for a specific purpose.
और एक सच्चा प्रचारक
clear message,
स्पष्ट संदेश,
proper manner,
सही तरीके से,
and for a clear purpose,
एक स्पष्ट उद्देश्यों के लिए प्रचार करने के लिए तैयार रहता है.
And look, number 5,
पांचवी बात,
verse 29,
29वां पद.
A true preacher,
एक सच्चा प्रचारक,
and a true biblical ministry,
और एक बाइबल पे आधारित सेवकाई,
is willing to work hard by the power of God.
परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मेहनत करने के लिए तैयार रहता है.
He has a clear purpose.
उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है.
And he is willing to work hard to the fulfillment of that purpose.
और वो मेहनत करने तैयार होता है उस उद्देश्य की परिपूर्णता के लिए.
He is not lazy.
वो आलसी नहीं है.
He is not irresponsible.
वो गैर जिम्मेदाराना नहीं
है. He doesn't take advantage of the people of God.
वो परमेश्वर के लोगों का फायदा नहीं उठाता है.
He doesn't waste his time.
वो अपना समय नहीं बर्बाद करता.
He realizes time is short.
वो जानता है कि समय कम है.
He realizes eternity is coming.
वो जानता है कि अनंत काल आ रहा है.
And he has a clear goal.
और उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है.
And he said, "For this purpose, I work."
वो कहता है इस उद्देश्य के लिए मैं मेहनत करता हूं.
And he says, I'm agonizing.
और वो कहता है इसके लिए मैं परेशान हूं.
Now that's what the word means. I'm agonizing. I'm suffering great pain.
मैं परेशान हूं, मैं दुख उठाता हूं, मैं दर्द उठाता हूं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं.
So he is a man that is willing to work hard with great discipline, diligence and pain.
और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत करने के लिए तैयार है, बड़े कर्तव्य सत्यनिष्ठा के साथ कर्तव्य को पूरा करने के तैयार है, दुख उठाने के तैयार है इस काम को पूरा करने के लिए.
But notice what he says.
ध्यान दीजिए क्या कहता है.
Not according to his own strength.
अपनी शक्ति के अनुसार नहीं कर रहा है
power,
लेकिन उसके सामर्थ्य शक्ति के अनुसार वो ये काम कर रहा है.
Mightily works within me.
और वो जो बड़े ही सामर्थ्य के साथ मुझ में काम करते हैं.
It is the power of God.
ये परमेश्वर की सामर्थ्य है.
It is the spirit of God.
ये परमेश्वर की आत्मा है.
It is the grace of God.
ये परमेश्वर का अनुग्रह है.
It is the anointing of God.
ये परमेश्वर का अभिषेक है.
It is the calling of God.
ये परमेश्वर की बुलाहट है.
It is the filling of the spirit of God.
ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण किया जाना है.
Time and time again in Paul's life.
और कई बार अलग अलग पौलुस के समय में जीवन में
him under the influence of the spirit of God.
हम कितनी बार उसको परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रभाव के अधीन देखते हैं.
He didn't trust in himself.
उसने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया.
What did he tell the Corinthians?
उसने कुरिन्थियों के लोगों से क्या कहा?
He said, I was with you with weakness and fear and much trembling.
उसने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में डरता हुआ, घबराता हुआ और कांपता हुआ आया.
And my message in ministry were not in persuasive words of wisdom.
वो कहता है कि मेरा संदेश और जो मेरे शब्द थे वो तुम्हें बड़े ही प्रभावशाली नहीं थे.
Demonstration of the Spirit and of power.
लेकिन वो उस परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसके प्रदर्शन में थे.
So that your faith would not rest upon the wisdom of men, but upon the power of God.
लेकिन ताकि तुम्हारा विश्वास जो है मनुष्य की बुद्धि पर आधारित ना हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखने वाला आधारित हो.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
If you're going to preach for 10 years,
अगर आप 10 साल तक प्रचार करेंगे.
If you're going to preach for 20 years,
अगर आप 20 साल तक प्रचार करेंगे.
If you're going to preach for 30 years,
अगर आप 30 साल तक प्रचार करेंगे.
If you're going to preach for 40 years,
अगर आप 40 साल तक प्रचार करेंगे.
If you're going to preach for 50 years,
अगर आप 50 साल तक प्रचार करेंगे.
You're going to need the power of God.
अगर तो आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता होगी.
That's why you must live in secret.
इसीलिए आपको गुप्त में समय व्यतीत करना है.
If you're going to love people.
यदि आप लोगों से प्रेम करेंगे.
Not for 1 year.
एक साल के लिए नहीं.
Not for 5 years.
5 साल
के लिए नहीं. Not for 10 years.
10 साल के लिए नहीं.
If you're going to love people all of your life.
अगर आप अपने संपूर्ण जीवन में लोगों से प्रेम करेंगे.
You need the power of God.
तो आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है.
If you're going to have difficulty.
अगर आपके सामने मुश्किलें आएंगी.
Not for 1 day.
एक दिन के लिए नहीं.
Not for 5 years.
5 साल के लिए नहीं.
Not for 10 years.
10 साल के लिए नहीं.
But all of your life.
लेकिन आपके संपूर्ण जीवन में मुश्किलें आपके सामने आएंगी.
You're going to need the power of God.
तो आपको परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए उसके लिए.
You're going to face disappointment.
आपके सामने निराशाएं आएंगी.
People are going to criticize you.
लोग आप पे नुकसानी करेंगे.
Oppose you.
वो आपका विरोध भी करेंगे.
They may not agree with you.
वो आपसे सहमत नहीं होंगे.
They may not appreciate you.
वो आप जो कहेंगे उसको तारीफ भी नहीं करेंगे.
They may never say that's a wonderful message, Pastor.
और वो हो सकता है कभी भी आपसे आके ये नहीं कहेंगे आपने बहुत बढ़िया संदेश.
And you do that for 40 years.
और इस तरह का काम अगर आप 40 साल करेंगे
must have the power of God.
तो ऐसा काम करने के लिए आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य होना जरूरी है.
So Paul said, I work hard.
और पौलुस कहते हैं कि मैं मेहनत से कार्य करता हूं.
I have a clear goal.
मेरे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है.
And I am willing to agonize.
और मैं दर्द उठाने के दुख उठाने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं.
But it's not in my own strength.
लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य में नहीं.
Gladly I will boast then in my weaknesses, he said.
वो कहता है कि मैं बड़े ही आनंद के साथ अपनी कमजोरी में गर्व उठाने के लिए तैयार हूं.
When I am weak, then I am strong.
क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं दृढ़ होता, मजबूत होता, सामर्थ्य होता.
Paul said, we have this treasure in earthen vessels.
Paulus कहता है कि हमारे इन शरीर की पार्थिव देह में वो खजाना है.
And because we have received this ministry, we do not lose heart.
और इसलिए क्योंकि हमें वो सेवकाई मिली है, हम हतोत्साहित नहीं होते.
His strength is perfected in my weakness.
उसकी सामर्थ हमारी कमजोरी में संपरिपूर्ण होती है.
Gladly then will I boast in my weakness, he says.
इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी कमजोरी में गर्व करूंगा.
That the power of God be manifested in me and through me.
ताकि परमेश्वर की सामर्थ मेरे में मेरे द्वारा प्रकट की जा सके, दिखाई दी जा सके.
Paul says, look at my life.
तो पौलुस कहता है मेरे जीवन को देखो,
my example.
मेरे उदाहरण के पीछे चलो.
Listen to my words.
मेरे शब्दों को सुनो.
Do what I do.
जो मैं कहता हूँ वो तुम करो.
And if you're going to serve God,
अगर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे,
you must be willing to completely identify with Jesus Christ and His church, no matter what the cost.
तो आपको यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के साथ संपूर्ण तरीके से पहचान बनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे कोई भी कीमत हो.
Faithfully fulfill the stewardship you have been given by God.
जो भंडारीपन परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आपको ईमानदारी के साथ परिपूर्ण करना है.
You must have a deeper intellectual and experiential understanding of the unfolding of the purposes of God.
परमेश्वर के उद्देश्यों का जो हमारे सामने खोला गया है उसकी आपके मानसिक समझ और आत्मिक समझ प्रतिदिन गहराई के साथ बढ़ती जानी चाहिए.
And you must preach a clear message.
और आपको एक स्पष्ट संदेश का प्रचार करना है.
In a proper manner.
और एक सही क्रमबद्ध तरीके से.
For one main goal.
एक मुख्य लक्ष्य के साथ.
And lastly.
और आखिर में.
You must be willing to labor and to work hard.
और आपको मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए तैयार होना है, इच्छुक होना है.
By His power,
उसकी सामर्थ के द्वारा,
the Holy Spirit,
परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा,
we desperately need,
और जिसकी हमें बड़ी ही आवश्यकता है.
If you are going to do this for the next 40 years,
अगर आप इस कार्य को अगले 40 साल तक करना चाहते हैं,
that's the characteristics of a true biblical ministry.
सच्ची बाइबल पे आधारित सेवकाई की यह गुण हैं.
My prayer for you.
मेरी प्रार्थना है आपके लिए.
And I, my prayer for myself.
मेरी प्रार्थना मेरे स्वयं के लिए.
The Christian life.
सच्ची मसीह जीवन.
And the Christian ministry.
और मसीह जीवन के लिए, मसीह सेवकाई
के लिए. Is not a short race.
ये एक छोटी दौड़ नहीं है.
It is a marathon.
ये एक लंबी दौड़ है.
And when men run marathons.
और जब लोग लंबी दौड़ें दौड़ते हैं.
Many begin.
बहुत लोग शुरुआत करते हैं.
Few finish.
बहुत कम लोग अंत करते
Why?
हैं. क्यों?
They didn't know what they were getting into.
उनको मालूम नहीं था कि वो लोग करने क्या चाह रहे
हैं. They weren't prepared.
वो लोग तैयार भी नहीं थे.
They weren't trained.
वो लोग उन्होंने परीक्षण भी नहीं किया था.
They didn't count the cost.
उन्होंने कीमत नहीं गिनी थी, प्रशिक्षण भी नहीं किया था.
Listen carefully.
और ध्यान सुनिए इस बात को.
He that endures until the end shall be saved.
वह जो अंत तक बना रहता है वही बचाया जाएगा.
Many begin in the Christian ministry.
बहुत सारे लोग मसीह सेवकाई में आरंभ करते हैं.
They get tired.
वो लोग थक जाते हैं.
They get tired of praying.
वो प्रार्थना करने से थक जाते हैं. अध्ययन करने से थक जाते हैं.
They get tired of preaching.
प्रचार करने से थक जाते हैं.
Tired of the sheep.
और अपनी भेड़ों से भी थक जाते हैं.
Tired of getting criticized.
और वो नुक्ता चीनी होती है, उससे वो लोग थक जाते हैं. और आलोचना से थक जाते हैं. वो लोग कोई परिणाम नहीं देखते, कोई फल नहीं देखते.
Whisper in their ear.
और फिर शैतान उनके कामों में, कान में आकर के फुसफुसाता है.
Quit.
छोड़ दो.
Give up.
हार मान जाओ.
You're a fool.
तुम बेवकूफ हो.
This is useless.
ये फालतू की बात है. शैतान काम में यही फुसफुसाता रहता है.
Go back.
वापस चले जाओ.
Look at everyone else.
बाकी लोग को देखो.
Look at you.
अपने आप को देखो तुम.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को.
If you believe you're called of God.
यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया
है. You are willing to identify with Jesus Christ.
और अगर आप यीशु मसीह से अपनी पहचान बनाने तैयार
हैं. He has given you a stewardship.
उसने आपको एक भंडारीपन दिया है.
And you understand the purposes of God.
और आप परमेश्वर के उद्देश्यों को समझते हैं.
And you are willing to clearly teach the word of God.
और आप परमेश्वर के वचन को स्पष्टता के साथ सिखाने के तैयार हैं.
By His power.
अगर आप उसकी सामर्थ्य के द्वारा मेहनत करने के तैयार हैं.
You will finish the race.
तो फिर आप अपनी दौड़ पूरा करेंगे.
I'm almost to the end.
मैं अपने अंत तक पहुंच चुका हूं लगभग. लेकिन मैं अभी वहां पहुंचा नहीं हूं.
And I'm not quitting.
और मैंने छोड़ा नहीं अभी तक. परमेश्वर की दया के द्वारा.
Sometimes I get tired.
कभी कभी मैं थक जाता हूं.
Sometimes I listen to that voice.
कभी कभी मैं उस शैतान की आवाज सुन लेता हूं.
Back to America.
वापस चले जाओ अमेरिका.
Your grandchildren.
तुम्हारे नाती पोते.
They miss you.
वो तुमको याद करते हैं.
I hear those voices.
मैं भी सुनता हूँ कभी कभी उस तरह की आवाजों को.
But by the grace of God.
लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा.
I'm going to get on that plane tomorrow.
मैं उस प्लेन पे चढ़ूंगा कल, हवाई जहाज पे चढ़ूंगा कल.
And I'm going to go east.
और मैं पूर्व की ओर जाऊंगा.
I'm not going to go west.
मैं पश्चिम की ओर नहीं जाऊंगा.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
If God calls you to preach.
यदि परमेश्वर आपको बुलाता है प्रचार करने के
लिए. Put your hand to the plow.
और आपने अपना हाथ हल पे रख दिया है.
And you don't look back.
और फिर आप पीछे मुड़के मत देखिए.
My prayer for you.
मेरी प्रार्थना है आप लोग के लिए.
Is that you would have a true biblical ministry.
कि आपके पास वास्तविक बाइबल पे आधारित सेविकाई होगी.
Let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.